आज है 4 जुलाई दिन शनिवार। स्वागत है आपका, मैं हूँ सुशीला सिंह। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने लोगों से बेलआउट के खिलाफ वोट करने की अपील की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 3 में से 1 परिवार है भूमिहीन, लेकिन क्यों?
भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विकट संकट में इसलिए है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अब लगभग फेल हो चुकी है। जब तक उसमें कुछ मेजर चेंजेस नीतियां नहीं आएंगी, तब तक वहाँ का हाथ रहने वाला नहीं है।
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में साधा बीजेपी पर निशाना।
भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना में कटास की बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया है तो ये बात कहाँ से उठी, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई बात नहीं हुई है तो इस प्रकार की बात कैसे होती।
साथ ही कार्यक्रम में होगा खेल और खिलाड़ी और विंबलडन की भी खबरें, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। ग्रीस में रविवार को बेलआउट को लेकर जनमत संग्रह होने वाला है। वहां की सरकार जहां इसका विरोध कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां और यूरोपीय देश इसके समर्थन में हैं। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने लोगों से अपील की है कि वो इस जनमत संग्रह के दौरान बेलआउट के खिलाफ वोट देकर देश की गरिमा को बरकरार रखें। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने मिस्र के सिनाई उपद्वीप से इसराइल पर 3 रॉकेट दागने का दावा किया है। संगठन ने ट्विटर के जरिए यह संदेश लोगों तक पहुंचाया। खबरों के अनुसार उनका एक रॉकेट दक्षिणी इसराइल के खुले इलाके में जाकर गिरा है। हालांकि इसमें कोई मारा नहीं गया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले के बाद इसराइल के साथ एक बड़े स्तर पर लड़ाई छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। सौर ऊर्जा की मदद से दुनिया भर की सैर करने वाला सोलर इम्पल्स विमान शुक्रवार को हवाई द्वीप में लैंड कर गया। हवाई पर पहुंचने से पहले यह विमान जापान से चला था, जिसमें इसे 5 दिन का समय लगा, जो कि इसकी पूरी यात्रा का एक बार में किया सबसे लंबा सफर था। इसके साथ ही इसके पायलट आंद्रे बॉर्शबर्ग ने बिना रुके सबसे लंबे वक्त तक विमान उड़ाने का कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया। वहीं विमान को डिजाइन करने वाले पीटर फ्रे ने कहा, यह हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है और इसका एहसास बहुत ही आसानी से नहीं होता। आखिरी के दिनों में कुछ लोगों को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जीत हासिल की। मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक मौका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप इससे ज़्यादा कुछ मांग सकते हैं। यह हमारे लिए जश्न मनाने का वक्त है। विमान को डिज़ाइन करने वाले पीटर फ्रे के शब्द। सोलर इम्पल्स ने इस साल 9 मार्च को अपनी यात्रा अबू धाबी से शुरू की थी। इस दौरान सौर ऊर्जा से उड़ने वाले इस विमान ने करीब 35,400 किलोमीटर का सफर तय किया। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा में तोड़फोड़ और उसे बर्बाद करने पर उसकी आलोचना की है। यूनेस्को की महानिदेशक ईरानी बोकोवा ने कहा कि इस्लामिक स्टेट लोगों को अपना गुलाम बनाने के लालच में उनसे उनकी धरोहर छीन रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन ने जिस तरह से ऐतिहासिक मूर्तियों को तोड़ा है, उससे उनकी क्रूरता और अज्ञानता झलकती है। लीबिया के दर्ना शहर में एक कार में बम विस्फोट होने से 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं अस्पतालों से आ रही जानकारी के अनुसार हमले में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। दरना में इस्लामिक स्टेट और स्थानीय मिलिशिया में आए दिन हिंसक झड़पें होती रहती हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली पर इस्लामिक स्टेट के कब्जे के बाद देश की सुरक्षा काफ़ी कमज़ोर हुई है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जारिफ ने परमाणु समझौते पर जल्द ही फैसला होने की संभावना जताई है। यूट्यूब पर दिए एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि समझौते के लिए दिन रात काम चल रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने रविवार को होने वाले जनमत संग्रह से पहले लोगों से अपील की है कि वो बेलआउट के खिलाफ वोट करें। उनका कहना था कि आर्थिक संकट से घिरे देश को अंतर्राष्ट्रीय राहत पैकेज के प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए और वो इसके लिए ब्लैकमेल ना हो। उधर यूरोपीय संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसा करता है तो ग्रीस को यूरोजोन से बाहर होना पड़ेगा। पूरे ब्यौरे के साथ अमल चौधरी।
ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने लोगों से अपील की है कि वे रविवार को होने वाले जनमत संग्रह में बेलआउट को नकार दें। उन्होंने इसे यूरोपीय देशों का ब्लैकमेल करार दिया है। टीवी पर दिए एक संक्षिप्त भाषण में उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ में ग्रीस की मौजूदगी पर बेलआउट को नकारने से कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, ग्रीस के लोगों, हम रविवार को लोकतंत्र और गौरव से भरा एक संदेश दुनिया भर के लिए भेजेंगे। हम इस रविवार को पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम यूरोप में रहने के लिए नहीं बल्कि इज्जत के साथ रहने के लिए मतदान करेंगे, जिससे हम सिर उठा के काम कर सकें और खुशहाली भरा जीवन बिता सकें। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के शब्द। वहीं यूरोपीय संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि बेलआउट को नकारने से ग्रीस को यूरोजोन से बाहर होना पड़ सकता है। ग्रीस की अर्थव्यवस्था पहले से ही नकद के गंभीर संकट से गुजर रही है। बैंक बंद कर दिए गए हैं और नकदी निकालने की सीमा तय कर दी गई है। यूरोपीय राजनेताओं ने ग्रीस के इन दावों का जोरदार विरोध किया है कि बेलआउट पैकेज को नकारने का वोट दोबारा बातचीत में ग्रीस की स्थिति को मजबूत करेगा। ग्रीस के विपक्षी नेता एंटोनिस सामारास ने कहा कि बेलआउट को नकारने से ग्रीस को यूरोजोन छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, मैं ग्रीस के हर पुरुष, महिला और राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि वो बेलआउट के समर्थन में वोट दें। इससे ग्रीस को यूरोप और यूरोजोन में रहने में मदद मिलेगी। मैं चाहता हूं कि रविवार को जब चुनाव हो तो सभी लोग अपने राजनीतिक नजरिए को छोड़कर देश की बेहतरी के लिए वोट दें। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। ग्रीस के विपक्षी नेता एंटोनिस सामारास के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महीनों तक बातचीत के बाद रविवार को ग्रीक मतदाता ये फैसला लेंगे कि वे अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं की शर्तों का समर्थन करते हैं या नहीं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जियां क्लॉड यूंकर ने कहा कि नकारने का मत ग्रीस की स्थिति को बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा। जबकि इसके समर्थन में वोट पड़ते हैं तो भी किसी समझौते पर पहुंचना आसान नहीं होगा। यूरो ग्रुप के वित्त मंत्रियों के प्रमुख चैरन डिसेलुएम ने ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारोफाकिस के इस दावे को खारिज कर दिया कि जनमत संग्रह के तुरंत बाद कोई समझौता हो जाएगा और बैंकों को खोल दिया जाएगा।
ग्रीस के प्रधानमंत्री ने जनता से की अपील कि वो बेलआउट के ब्लैकमेल को नकार दे। ये थे अमल चौधरी। केंद्र सरकार ने कल सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े जारी किए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि गांव में रहने वाले तीन में से एक परिवार भूमिहीन है। साल 1932 के बाद करीब पहली बार ऐसा दस्तावेज आया है। जनगणना सर्वेक्षण देश के 640 जिलों में किया गया। सरकार का कहना है कि जनगणना के आंकड़ों से योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बदलाव सही योजनाओं से आएगा। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
देश की पहली डिजिटल जनगणना ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें इंडिया का डिजिटल होना तस्वीर का एक पहलू हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है। जनगणना के आंकड़े जाहिर करते हैं कि गांव में रहने वाले 23% से अधिक परिवारों में 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है। इन आंकड़ों के मुताबिक गांव में रहने वाले 5.37 करोड़ परिवार भूमिहीन हैं। ऐसे परिवार गुजारे के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं। आर्थिक मोर्चे पर गांवों की जो तस्वीर उभरती है उसे देखकर बाकी लोग भले ही चौंक जाएं, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों को कोई हैरानी नहीं होती। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ आलोक पुराणिक कहते हैं,
जो डेटा बता रहा है ये आश्चर्यजनक नहीं है। ये लगभग उन्हीं आशंकाओं को, खतरों को रेखांकित करता है, सिद्ध करता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में वर्षों से व्यक्त किए जाते रहे। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विकट संकट में इसलिए है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अब लगभग फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। जब तक उसमें कुछ मेजर चेंजेस, मेजर इन्वेस्टमेंट, मेजर रणनीतियां नहीं आएंगी, तब तक वहाँ का हाथ रहने वाला नहीं है।
आर्थिक विशेषज्ञ गांवों की स्थिति बेहतर करने के लिए सही योजना बनाने की बात कर रहे हैं तो सरकार भी ऐसा ही दावा कर रही है। जनगणना जारी करने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इन आंकड़ों से योजना बनाने में मदद मिलेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह,
आइडिया इज टू डील विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी ऑफ द फैमिली साइमल्टेनियसली।
विचार गरीबी के सभी पहलुओं से लड़ने का है, चाहे ये खाने का मामला हो या फिर मकान, घर, नौकरी, स्वास्थ्य, स्किल या फिर गांव या पंचायत में गरीबों की आवाज मुखर करनी हो। ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह के शब्द। जनगणना के मुताबिक देश में कुल 24.39 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से 17.91 करोड़ परिवार गांवों में रहते हैं। इनमें से करीब 10 करोड़ परिवार वंचित श्रेणी में हैं। जनगणना जारी होने के बाद इनकी स्थिति में कैसा बदलाव आएगा, इन्हें भी इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी पार्टी शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री की अमेरिका रवानगी के समय विमान की कथित देरी को लेकर सामना में सवाल उठाया गया है कि जो सहूलियत मुख्यमंत्री को मिली वो दूसरों को भी दी जानी चाहिए। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने शिवसेना नेता संजय राउत से शिवसेना के तल्ख रुख पर को लेकर बात की और पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार के दोनों सहयोगियों के रिश्तों में खटास आ गई है।
उसमें खटास की बात क्या है? इसमें भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना में खटास की बात नहीं है। ये एक व्यू है जो पूरे देश भर में चलना चाहिए। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए डेमोक्रेसी में जनता के साथ। कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो या शिवसेना का भी हो चाहे, अगर जनता को आप इस तरह से बंधक बनाकर अपनी सत्ता आप नहीं चला सकते। जैसे देखिए, वहां परसों मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम का इशू हो गया, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने उस बारे में इंक्वायरी शुरू की, उसने भी एक फ्लाइट लेट किया है। तो ये किसी ने भी नहीं करना चाहिए, चाहे मंत्री हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे और कोई हो। नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी थ्रेट का विषय आता है तो फ्लाइट लेट का।
लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि वो अमेरिका से लौटकर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ केस करेंगे, मुकदमा करेंगे।
अच्छी बात है, अगर मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया है तो ये बात कहाँ से उठी, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री एक्सप्लेन करते हैं, मुख्यमंत्री कहते कि ये ऐसी नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, तो इस प्रकार की बात कैसे उठी, तो उसको भी इंक्वायरी होनी चाहिए।
सामना के माध्यम से लगातार शिवसेना कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर और मुख्यमंत्री पर हमले बोल रही है। जैसे उनकी शपथ का भी एक मुद्दा आया था कि किस मुहूर्त में शपथ ले ली गई।
देखिए, ये एक मराठी भाषा है, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। जिस तरह से सरकार एक के एक आरोप में घिर जा रही है, मंत्रियों का ऊपर आरोप होते हैं और कुछ बातें आती है, तो स्वाभाविक लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, श्रद्धा का विषय होता है। ये एक मार्मिक और व्यंगात्मक टिप्पणी है कि किस मुहूर्त में आपने शपथ ली।
मोदी सरकार भी लगातार समस्याओं में घिरी हुई है, उसको लेकर भी शिवसेना लगातार कहीं ना कहीं निशाना साधती रहती है, तो क्या तालमेल में, सामंजस्य में कुछ कमी है? कैसे?
ये कोई तालमेल की बात नहीं। शिवसेना एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, शिवसेना कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है। शिवसेना की अपनी सोच है, समझ है, अपनी राजनीति है, अपनी भूमिका है। और हमेशा से बालासाहेब ठाकरे जी भी, आपको मालूम होगा, जब भी एक बात मन में आती है तो बिंदास तरीके से कहते थे, वो सत्ता में है या सत्ता में नहीं है उसका विचार हमने कभी नहीं।
मानसून सत्र तो बड़ा हंगामेदार होने के आसार।
मानसून सत्र तो हंगामेदार होगा, लेकिन देखिए, केंद्र में हम एनडीए के साथ है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बीजेपी के साथ चल रही है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से सरकार को कोई समस्या निर्माण हो। हम हमेशा सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन हम सबसे ज्यादा जवाबदेही जनता को है। अगर जनता ने हमारे ऊपर उंगली दिखाई तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में, 4 साल के बाद जो चुनाव होगा, जनता को हम जवाब देने में हमको बहुत तकलीफ होगी।
शिवसेना नेता संजय राउत से बात कर रहे थे वात्सल्य राय।
BBC इंडिया बोल।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र किया और साथ में सेल्फी विद डॉटर हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ तस्वीर पोस्ट करने को कहा। प्रधानमंत्री की अपील पर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई, लेकिन कुछ लोगों ने इस मुहिम पर सवाल भी उठाया और कहा कि असल जरूरत महिलाओं को लेकर सोच बदलने की है। इस बार BBC इंडिया बोल में बहस का यही विषय है, क्या सिर्फ सेल्फी से बदलाव आता है या महिलाओं के लिए सोच बदलने की जरूरत है। शनिवार 4 जुलाई शाम 7:30 बजे आप शामिल हो कार्यक्रम BBC इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें मुफ्त फोन करें 1800-11-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
भारत प्रशासित राज्य कश्मीर में सेना ने ये दावा किया है कि 5 से 6 घुसपैठियों ने पाकिस्तान के क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सेना ने उसे विफल कर दिया। सेना का कहना है कि मुठभेड़ में एक चरमपंथी मारा गया है और एक बड़े इलाके में तलाशी अभियान जारी है। एक रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
उत्तरी कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली अस्थायी सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में सेना का दावा है कि पाकिस्तानी क्षेत्र से आने वाले घुसपैठियों के साथ कल हुई लंबी लड़ाई के बाद एक चरमपंथी मारा गया। सैनिक प्रवक्ता ने बताया कि उड़ी के तोरना जंगलों में हापतखाई नाले के निकट जब सेना को घुसपैठ की भनक पड़ी तो चरमपंथियों का घेरा किया गया। इसके बाद मुठभेड़ हुई जिसमें एक चरमपंथी मारा गया। सेना को कोई हानि नहीं पहुंची है। सैनिक अधिकारियों का कहना है कि घुसपैठ करने वाले चरमपंथियों की संख्या 5 से 6 के बीच थी और बाकी चरमपंथी या तो वापस पाकिस्तानी क्षेत्र में फरार हो गए या तोरना जंगलों में छुपे हुए हैं। तमाम तलाशी अभियान जारी है। पिछले महीने भी उत्तरी कश्मीर के ही टंगडार क्षेत्र में सेना ने बताया था कि पाकिस्तान की छजोला पोस्ट के छोर से 6 से 7 चरमपंथियों ने घुसपैठ का प्रयास किया, लेकिन जब इन्हें भारतीय कंट्रोल वाले दर्शन पोस्ट के पास रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में सूबेदार बीबी थापा समेत 4 सैनिक घायल हो गए, लेकिन अस्पताल ले जाते हुए इनमें से 3 की मृत्यु हो गई थी। सैनिक अधिकारियों का कहना है कि बर्फ पिघलने के साथ ही घुसपैठ के प्रयास बढ़ गए हैं। इस बीच कश्मीर के दक्षिणी पहाड़ों पर श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए लोगों का तांता बंधा है और सेना ने यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यात्रा के सिलसिले में सेना ने सक्रिय भूमिका के साथ एक ऑपरेशन शुरू किया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
और आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जानते हैं अमल चौधरी से।
सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम आज घोषित होंगे। यह पहला मौका है जब साक्षात्कार खत्म होने के 4 दिनों के अंदर इसके मुख्य परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। करीब 4.5 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें से करीब 3,000 को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। ईस्ट चाइना सी में बढ़ते विवाद के मद्देनजर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे टोक्यो में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड हिस्सा ले रहे हैं। वियना में ईरान के साथ परमाणु समझौते को अंतिम स्वरूप देने की कोशिश शनिवार को भी जारी रहेगी। इस दौरान G6 देशों की कोशिश होगी कि वो ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने की अनुमति हासिल कर लें। शनिवार को प्रतिष्ठित साइकिल रेसिंग प्रतियोगिता टूर डे फ्रांस का 102वां संस्करण शुरू होगा। 26 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 21 चरण होंगे, जिसमें प्रतियोगी 3,360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। मिस्र की एक अदालत पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, पूर्व प्रधानमंत्री अहमद नाजिफ और पूर्व गृह मंत्री हबीबी अल अदली के एक मामले में फैसला सुना सकती है। इनके खिलाफ इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन काटने के आरोप हैं।
तो आज जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर वो बता रहे थे अमल चौधरी। समाचार पत्रों की समीक्षा भी करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं विंबलडन की। कल पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच, स्टेन वावरिंका और डेविड गोफिन और महिला एकल वर्ग में मारिया शारापोवा, विक्टोरिया अजारेंका और विलियम्स बहने अपने मैच जीतने में कामयाब रहीं। पूरा ब्यौरा सुनिए लंदन से अपूर्व कृष्ण से।
विंबलडन 2015 दिन भर के खेल का लेखा जोखा।
विंबलडन पर BBC हिंदी सेवा की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ लंदन से मैं हूं अपूर्व कृष्ण। चैंपियनशिप के 5वें दिन का सबसे बड़ा मैच हुआ देर शाम को सेंटर कोर्ट पर, जब एक बड़ा उलटफेर होते होते रह गया। दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी सरीना विलियम्स को कल दुनिया की 59वें नंबर की खिलाड़ी हेदर वॉटसन को हराने के लिए एड़ी चोटी का संघर्ष करना पड़ा। सरीना ने पहला सेट आराम से 6-2 से जीत लिया, मगर दूसरे सेट में वॉटसन ने सरीना की सर्विस ब्रेक की और सेट 6-4 से निकाल लिया। तीसरे और अंतिम सेट में वॉटसन ने एक समय में 3-0 से बढ़त बना ली थी, मगर इसके बाद सरीना ने मैच में वापसी की और अंततः 7-5 से ये सेट जीतकर चौथे दौर में जगह बनाई। मैच के बाद सरीना ने बताया कि मुकाबला कितना कड़ा था। मैं इससे पहले कुछ कड़े मुकाबलों में हारी हूं, मगर ये मेरे लिए सबसे मुश्किल मैचों में से एक था। हेदर ने अविश्वसनीय खेल दिखाया और इसे मैच जीत जाना चाहिए था, क्योंकि उसने मेरी 2 सर्विस तोड़ दी थी। उन्होंने दिखा दिया कि वो कितनी महान खिलाड़ी हैं। सरीना विलियम्स के शब्द। अब चौथे दौर में सरीना का मुकाबला उनकी बड़ी बहन वीनस विलियम्स से होगा। वीनस ने कल सर्बिया की अलेक्सांड्रा क्रुनिच को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। चौथे सीट की रूस की मारिया शारापोवा भी चौथे दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने रोमानिया की खिलाड़ी को बड़े आराम से 6-4, 6-3 से हरा दिया। पांचवें दिन पुरुषों के सिंगल्स में दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमिक को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-3 से हराया। चौथे सीड के खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका भी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने स्पेन के फर्नांडो वर्डेस्को को सीधे सेटों में 6-4, 6-3, 6-4 से हराया। भारत के लिए पांचवा दिन अच्छा रहा। रोहन बोपन्ना ने अपने डबल्स और मिक्स डबल्स दोनों वर्गों के मैच जीत लिए। उन्होंने ब्राजील के थॉमस बेलुची और अर्जेंटीना के गुइलेर्मो डुरान की जोड़ी को सीधे सेटों में 7-5, 7-6, 7-6 से हराया। सानिया मिर्जा भी डबल्स के तीसरे राउंड में प्रवेश कर गई हैं। उन्होंने स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस के साथ जापान और इटली के खिलाड़ियों की जोड़ी को सीधे सेटों में बड़े आराम से 6-0, 6-1 से हरा दिया। मगर महेश भूपति विंबलडन के मिक्स डबल्स मुकाबले में भी पहले राउंड में बाहर हो गए। रूस की एला कुद्रियाप्सेवा के साथ उनका मुकाबला अमेरिका के खिलाड़ियों निकोल मुनरो और मेडिसन ब्रिंगल की जोड़ी के साथ था, जिन्होंने महेश एला की जोड़ी को 5-7, 6-3, 6-2 से हरा दिया। आज विंबलडन के छठे दिन दूसरी सीड के खिलाड़ी रोजर फेडरर, तीसरी सीड के एंडी मरे के अलावा महिलाओं में पिछले साल की विजेता पेत्रा क्वितोवा भी तीसरे दौर का मैच खेलेंगी। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और विंबलडन की खबरों के बाद अब खेल और खिलाड़ी आदेश कुमार गुप्त के साथ।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीन खिलाड़ी चर्चा में छाए रहे। उनमें से एक खिलाड़ी सुरेश रैना ने एक व्यवसायी से रिश्वत लेने के ललित मोदी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो पूर्व आईपीएल कमिश्नर के लिए कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं और वो किसी तरह के गलत कामों में शामिल नहीं है। हुआ ये कि अभी भारतीय क्रिकेट टीम पिछले दिनों बांग्लादेश के हाथों तीन मैचों के वनडे सीरीज में 2-1 से मिली शिकस्त के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि चेन्नई सुपर किंग्स के तीन खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में शामिल हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने इस मामले में जून 2013 में ही आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ डेव रिचर्डसन को खत लिखा था। ललित मोदी ने दावा किया कि उन्हें पुख्ता तौर पर पता चला है कि इन खिलाड़ियों को एक रियल एस्टेट टाइकून से पैसा और दूसरे तोहफे मिले थे। मोदी का इशारा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो की तरफ था। इसके बाद बीसीसीआई ने तीनों खिलाड़ियों को क्लीन चिट दे दी। इस मसले को लेकर जाने माने क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
टेक्निकली देखा जाए तो बीसीसीआई बिल्कुल सही है, क्योंकि लेटर तो लिखा था ललित मोदी ने आईसीसी को, लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि कौन से टूर्नामेंट किस मामले के लिए बात करते हैं। आईपीएल जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जहां पर बीसीसीआई इन्वॉल्व होती है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें और तीनों ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे या है, तो उसमें बीसीसीआई वो नहीं बनता है कि वो दखल दे, क्योंकि वहां पर आईसीसी के कानून लागू हो जाते हैं। और आईसीसी ने ये कहा कि भाई हमने अब जो तहकीकात की है उसमें हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब कुछ भी इन्फॉर्मेशन, और भले ही ललित मोदी से आया हो जो बिल्कुल श्रीनिवासन के अगेंस्ट थे, उसके बावजूद अगर कुछ तहकीकात करें तो क्लीन अप करना है क्रिकेट को और करप्शन फ्री बनाना है, तो जो कुछ भी मौका मिले उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
अब बीसीसीआई करप्शन फ्री कैसे बने? जिन्होंने इल्जाम लगाया वो खुद एक वक्त बीसीसीआई के अपने टूर्नामेंट आईपीएल के कमिश्नर थे। जिन पर उंगली उठाई यानी एन श्रीनिवासन, वो खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। और फिर पॉलिटिक्स के गलियारों से निकलकर ही तो क्रिकेट का रास्ता जाता है। ऐसे में शह और बात का खेल तो चलता ही रहेगा। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है ललित मोदी के दिमाग में? अयाज मेमन फरमाते हैं,
बहुत मुश्किल है कहना कि ललित मोदी आजकल उनकी थिंकिंग क्या है, कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक्सपोजे कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें सामने आ रही है। पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं सामने, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के आ रहे हैं, अक्रॉस पार्टी लाइंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, वो तो जो आ रहा है सामने उन पे जैसे एक तरह से ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। क्या सच है, कितना सच है, ये कहां तक मामला जाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ी एक अनफोल्डिंग स्टोरी है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मैं कहूंगा कि हम सब जो है बहुत क्लोजली इसे ट्रैक कर रहे हैं।
अब देखना है कि ये विवाद क्या रंग दिखाता है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम अगले सप्ताह जिम्बाब्वे से 3 एकदिवसीय और 2 2020 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत शुक्रवार 10 तारीख को पहले एकदिवसीय मुकाबले से होगी। भारत की कमान अजिंक्य रहाणे को सौंपी गई है। अजिंक्य रहाणे जिम्बाब्वे दौरे को लेकर कहते हैं,
कैप्टनशिप ज़रूर एक अलग रोल होता है। हर एक चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ता है, प्लेयर के बारे में, अपोजिशन के बारे में, हर एक कंडीशन सिचुएशन के बारे में आपको एनालाइज करना होता है। तो जैसे हम लोग जिम्बाब्वे जाएंगे तभी से ही एक्चुअली आइडिया आएगा कि किस तरीके का प्रिपरेशन करना थी, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज करनी है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बैक माई इंस्टिंक्ट्स एंड बैक माई ओन स्टाइल।
वहीं पल्लेकल में कल से श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इसके बाद श्रीलंका ने स्टंप के समय तक 8 विकेट खोकर 277 रन बना लिए थे। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने 130 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि पाकिस्तान के लेग ब्रेक गेंदबाज यासिर शाह ने 77 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। और अब बात हॉकी की।
They are victorious over India and they will compete in Sunday's final here at the Fincher Hockey World League semi-final.
बेल्जियम में खेले गए विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में कल भारत को मेजबान बेल्जियम के हाथों 4-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम के लिए वॉन ओबेल फ्लोरेंट ने अपनी टीम के लिए 3 गोल किए। अब भारत विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में आज तीसरे से चौथे स्थान के लिए खेलेगा। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का, और मेरे सहयोगी अमल ज्यादातर अखबारों पर नजर डाल चुके हैं। अमल, क्या कहते हैं आज के अखबार?
सुशीला, आज के पहले पन्ने की मुख्य खबरों की बात करूं तो अंग्रेजी और हिंदी जो अखबार हैं उनकी मुख्य खबरें लगभग एक हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक व जाति जनगणना 2011 के हवाले से खबर प्रकाशित की गई है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है कि गांव के 10 में से 7 घर 200 रुपये प्रतिदिन से भी कम पर जी रहे हैं। वहीं द हिंदू का शीर्षक है कि गाँव के 30% परिवार बिना जमीन के रह रहे हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की मुख्य खबर दाऊद इब्राहिम पर है। खबर का शीर्षक है कि दाऊद भारत वापस आने के लिए यहाँ के अधिकारियों से संपर्क में था। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि भारत में गांव की एक तिहाई जनसंख्या गरीब है। अगर उधर हिंदी अखबारों की बात करें तो हिंदुस्तान हिंदी लिखता है कि गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन। और लेकिन हालांकि दैनिक भास्कर ने भी ऐसी ही खबर लगाई कि ये देश की अधूरी तस्वीर, और उन्होंने काफ़ी पूरा विशेषांक एक लगभग पूरा एक अपना जो पहला पेज है वो इसी खबर पे दिया है। और NBT की बात करें तो उन्होंने पूर्व रॉ चीफ AS दुलत के खुलासे को मुख्य खबर बनाया है और शीर्षक दिया है कि किताब बम पर छिड़ी जुबानी जंग। और अन्य खबरों की बात करें तो TOI ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार इसराइल के खिलाफ वोट देने से भारत के इनकार को की खबर को प्रकाशित किया है। वहीं हिंदू के अनुसार CPIM ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है। दूसरी तरफ अगर अन्य खबरों की बात करें तो इसमें दैनिक भास्कर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जो हमारे सोशल मीडिया पर जो एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पर जो रहते हैं, उसमें एक अध्ययन किया गया है। उसके हिसाब से 14 करोड़ पोस्ट और 1 अरब प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला है फेसबुक ने कि ज़्यादा अगर आपको लाइक चाहिए अपने पोस्ट पे तो आप शाम को 7 से 8 बजे तक अपने पोस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बिजनेस की खबरों की बात करें तो इसके हिसाब से जून में जो सर्विस सेक्टर है उसका प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा है। और एक अन्य खबर है कि रतन टाटा ने गूगल और इंटेल के साथ पार्टनरशिप की है। और बार्क्लेज एक फर्म है जिसने एक अनुमान लगा है कि इस साल जो औसत खुदरा महंगाई रहेगी वो 5% तक रहेगी। दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान हिंदी की अखबार का रुख करें तो उसमें एक सेहत से जुड़ी एक खबर है जिसके अनुसार तनाव में जो लोग ज़्यादा होते हैं वो अपने आप को खाने से ज़्यादा बचाएं क्योंकि वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। ग्रीस में रविवार को बेलआउट को लेकर जनमत संग्रह होने वाला है। वहां की सरकार जहां इसका विरोध कर रही है वहीं विपक्षी पार्टियां और यूरोपीय देश इसके समर्थन में हैं। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने मिस्र के सिनाई उपद्वीप से इसराइल पर 3 रॉकेट दागने का दावा किया है। संगठन ने ट्विटर के जरिए यह संदेश लोगों तक पहुंचाया। सौर ऊर्जा की मदद से दुनिया भर की सैर करने वाला सोलर इम्पल्स विमान शुक्रवार को हवाई द्वीपों में लैंड कर गया। हवाई पर पहुंचने से पहले यह विमान जापान से चला था जिसमें इसे 5 दिन का समय लगा, जो कि इसकी पूरी यात्रा का एक बार में किया सबसे लंबा सफर था। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा में तोड़फोड़ और उसे बर्बाद करने पर उसकी आलोचना की है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए हेमंत कुशवाहा और मुझे इजाजत।